वापस चलते हैं अपनी कहानी पे। अब मलका सबा के पास खत पहुंचता है। अब देखते हैं कि वो क्या करती है। पहले अभी तक हम देख रहे थे एक परिंदे का किरदार, अब हम देखेंगे एक ऐसी औरत का किरदार जो अभी बजाहर देखने में बेदीन है, मुशरिक है, अपने मुल्क की हुक्मरान है, लेकिन देखिए उसके अंदर फहम और समझ थी तो उसने क्या किया। आय 29। कालत, वो बोली, या युहल मलाओ, ए मेरी कौम के सरदारो। मलाओ वही है जिसको मला से पड़ा पीछे, मला कहते हैं भरने को, तम लौल मीजान का लफ्ज आता है दो में, तो बादशाहों या बड़े लोगों के रोब से लोगों के दिल भरे होते हैं, इन्फ्लुएंशियल कह लीजिए, इन लीड्स बा असर लोग। कहने लगी है बादशाह, ए मेरे दरबारियो, इन्नी उल्की इलैया किताबुन करीम, बेशक मैं डाली गई अपनी तरफ एक बहुत इज्जत वाली बात। देखिए खत सबको आया था लेकिन मलका ने उसको अपने लिए लिया, पहली बात। या युहल मलाओ, कोई छुपी हुई बात होती, कोई दिल का चोर होता तो कभी दूसरों से शेयर ना करती। दूसरी बात कह ये रही है उनको कि खत आया लेकिन कह रही ये मुझे आया। ये है पहला नुक्ता, लिखिए आप अपने नाम के साथ। पूरे सबक में जितनी बातें होती हैं, क्या मैं ये कहती हूं कि ये अल्लाह का कलाम मेरी तरफ है? पूरे सबक को ये कहा करें कि ये मेरे लिए अल्लाह ने ये आयतें नाजिल की। भूल जाए सारे लोगों को, अगले पिछले मुसलमान जितने भी गुजरे और आएंगे क्यामत तक, आप कहें ये किताब सिर्फ और सिर्फ मेरी हिदायत के लिए नाजिल हुई, अगर मैंने इसे हिदायत ना ली तो इसका मकसद नहीं होगा पूरा, और इसी तरह की बात है। अच्छे लोग अमल की बात को अपने लिए लेते हैं और रुख्सतों की बात को दूसरों के लिए लेते हैं। अफसोस की बात है, वैसे हमारा मामला अमूमन इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। हम कहते हैं देखो तुम्हें कह रही हैं, कोनिया मारते हैं, कभी कनखियों से देखते हैं, इशारे करते हैं, कोई जरा सी बात ऐसी क्लास में हो जाए, जनरल बात होगी, लेकिन हम अपने साथ वाले को देख के कहते हैं ये तुम हो, ये तुम्हारी बातें हो रही हैं। तो मलका क्या कहती, इन नी उल किया इलैया, मेरी तरफ डाला गया। दूसरी बात है कि किताबुन करीम, किताब पे नजर थी। यहां रुकिए, बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है तौहीद का। आप बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि इस हिस्से का एक छोटा सा टॉपिक बना ले, मलका सबा या जो भी उसका नाम है किताबों में, उसको हिदायत क्यों मिली, यानी हिदायत को पाने वालों की सिफात। ठीक है, नंबर एक, उसने उस पैगाम को अपने लिए लिया, यस इट्स ओनली फॉर मी। दूसरी बात, नजर किस पे, किताबुन करीम। अब आप पहले इस मिसाल को समझेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। आपके पास एक खत आता है और खत कहां से आया है? चले इज्जत के लिए हम कह देते हैं इमाम काबा की तरफ से आता है। आपको सऊदी एम्बेसी के बड़े खूबसूरत एनवेलप में लिपटा हुआ एक दावतनामा मिलता है। आपने खोला, पढ़ा, उसमें आपको किसी जगह जाने की दावत दी, कुछ भी कहा, उम्रे की है, दावत हज की। आप अपनी दोस्त को कैसे बताती हैं? सच बताइए, पहला जुमला क्या होगा? इमाम काबा का खत आया है, सऊदी अरब के बादशाह ने मुझे खत लिखा। इस मलका ने ना सुलेमान का जिक्र किया ना उसकी सल्तनत का, सबसे पहले किताबुन करीम। ये फर्क होता है, मुझे तो खौफ आता है, सच्ची बात है। कुछ लोग सिर्फ पैगाम देने वालों में जकड़े रहते हैं और प्रोटोकॉल, मुझे उसने कहा, कोई आलिम दीन ही हमें चार लफ्ज कहते हैं, कहते हैं उन्होंने मुझे सलाम दिया, मैंने हाथ मिलाया था। देखिए मोहब्बत और चीज है, रिस्पेक्ट और चीज है, इमोशनल होना भी और चीज है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन याद रखिए बात पैगाम पे। कोई बंदा खोटा सिक्का क्यों ना हो, आंख का काना है, बेअमल है, मुनाफिक है, बट मुझे क्या मिला, किताबुन करीम मिली, हिदायत पा जाएंगे। आप हमेशा ये सोचा करें कि मैं कुरान सुनती हूं, या मैं यहां मिसाल आप सब स्टूडेंट्स को ही कह दूं, क्लास में आके बैठते हैं, आप ऑनलाइन पे बैठ के सुनते हैं, मुझे क्या मिलता है? मुझे कुछ मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कहने वाला बाअमल, बेअमल, अरबी, अजमी, गोरा, उसकी उर्दू अच्छी के नहीं, वो खूबसूरत बोलता, वो सख्त बातें करता, वो ताने देता, आंखें खोलता, गोराता, आई डोंट माइंड, बस मुझे एक अच्छी चीज मिल गई, इंशाल्लाह हिदायत पा जाएंगे। सारे झटकों से आप बच जाएंगे। बहुत झटके देता है कुरान, बिलीव मी। अन्ना को निचोड़ निचोड़ के, जैसे जूसर में ऑरेंज को डालें तो उसका छिलका भी क्रश होने का डर होता है ना, कुरान तो हमारी अन्ना की धज्जियां उड़ा देता है। जरा हाथ सख्त पड़ जाए तो छिलका भी अंदर कट जाएगा। लेकिन वही लोग एंड तक पहुंचते हैं जो किताब बन करी। मुझे तो ये मिला, बल्कि और मुखलिस, आप और मोहसिन समझे, खुद अच्छा नहीं था, मुझे अच्छी बात सिखा गया, खुद तो शम्मा जलती रही और मुझे रोशनी दिखा गई। तो मलका ने पहले पैगाम की बात की, हम पहले पैगाम देने वाले की बात करते हैं, वो है। अच्छी भी करते हैं, बुरी भी करते हैं, देखो खुद दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, उनके बच्चों को देखा, वो उनका घर देखा, वो गाड़ी देखी उनकी, और बेटी की शादी में देखा क्या कह रही थी। ये जुमले नेगेटिव जुमले हैं, इसको जिंदगी से निकाले। अब जब किताब की बात कर दी, करीम और करम वाली, किताब का मैसेज क्या था, क्या करीम था? आप कहते कि अरबी जुबान में करीम सबसे रकीक चीज को कहते हैं। अरब लोग शराब को करम कहते थे, बहुत लजीज सॉफ्ट, जिस चीज में बहुत सारी खूबियां होती थी ना उसको करीम कहते थे। मतलब यह है कि उसने हजरत सुलेमान की तहरीर को पढ़ा तो रिएक्शन नहीं शो किया, बल्कि उसको एक अच्छी ऑनर फील किया। अब खत पढ़ के सुनाती है, इन्नहु, ये है हजरत सुलेमान के खत के अल्फाज, आप लिख लीजिए, इसमें भी अमल की चीजें। इन्नहु मिन सुलेमाना, ये सुलेमान की तरफ से है। फ्रॉम का लफ्ज ऊपर है, हम कहा लिखते हैं? सारी तहरीर पढ़ के एंड पे कहते हैं लिखी किसने है, एक सफा पलटेंगे दूसरा पलटेंगे, है। तो यहां से हमारे असलाफ का अमल भी मिलता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए जब किसी को तहरीर लिखते थे ना तो ऊपर अपना नाम भी साथ लिखते थे। दूसरी बात, मिन सुलेमान, सिर्फ सुलेमान, ये नहीं लिखा किंग फुलां फो किंग सोलेमन, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्टैंप लगी होती, कोई इनका लोगो लगा होता, नहीं, इन्ना मिन सुलेमान, ऐसे नहीं लग रहा। आप देखिए आजीज बंदा, इन्ना हु मिन सुलेमान, ये सुलेमान की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत भी खोल के देख लीजिए तो आप भी बड़े आजीज नाम के साथ अपने आप को पुकारते थे, ये अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना तारुफ। वह इन्ना हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बेशक ये के साथ नाम अल्लाह के जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला। ये है कुरान पाक का वो वाहिद मुकाम जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत के अंदर उसके मतन में शामिल है। हर जगह सूरत शुरू में होती है सिवाय सूरत तौबा के। इसीलिए फिर उलमा में इख्तलाफ है कि क्या बिस्मिल्लाह कुरान की एक अलग आयत है या सूरत का हिस्सा है। तो यहां अलग आयत है, इसमें तो कोई शक नहीं, सूरत नमल आयत 30, ठीक है, शुरू में जो लिखी जाती है। बास कहते हैं ये सूरत का हिस्सा है, बास कहते हैं आयत है। इसीलिए भी आयतों का फर्क भी पड़ता है, 6666 का जो फिगर है, अगर कोई बिस्मिल्लाह को ऐड कर लेगा तो आप देखिए कि 113 आयतें ऐड हो जाएंगी। और जो कहते हैं नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सूरत का हिस्सा है तो 113 आयतें कम हो जाएंगी। तो बहरहाल यहां से बिस्मिल्लाह की शान भी पता चलती है कि ये कितना पुराना जुमला है। फिर दूसरी बात क्या पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये कलाम सिखाया गया था, और रिवायत से भी ये मिलता है। आपने फरमाया कि मुझसे पहले किसी और नबी को ये कलमात नहीं सिखाए गए सिवाय सुलेमान अलैहिस्सलाम के। नाम और भी तो हो सकता है ना, बिस्मी रब्बी अल्लाहुम्मा, लेकिन ये पूरी वो बिस्मिल्लाह जिसका हमें हुक्म दिया गया पढ़ने का, ठीक है। फिर इसी तरह से जो आपको सुनाया था कि एक दफा अरबों ने बड़ी कोशिश की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के मुकाबले पर एक कलाम ले आए, तो किसी शख्स को गालिबन इब्ने मुकफ्फा उसका नाम आता है, बिठा दिया कि तुम, हम खिलाते हैं पिलाते हैं, तुम ये काम करो। लेकिन काफी अरसे के बाद जब देखा तो उसने कलमा पढ़ लिया और लगा कि उसने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बाद कहा कि जब से तुमने मुझे बिठाया मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वजन की कोई आयत नहीं बना सका। और मैंने इस पे अक्सर बात की है, जब भी हम खास बे सूरह फातिहा से पहले जो इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर करते हैं, लेकिन वो तो अब बात पुरानी हो गई ना, अगर आपसे भी की होगी तो आपको भूल गई। आप इसको लिख के तो देखिए, अल्लाह की मोहब्बत टपकती है। बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के, क्या कुछ नहीं पता? देखिए ये भी तो हो सकता था ना, बिस्मिल्लाह ही खाता हूं, अकल तू, शरीब तू, फेल मखजूफ है, میں جب شروع میں اس کو جب ہم بچپن میں اس کا ترجمہ پڑھتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی سات نام اللہ کے شروع کرتا ہوں تو تھوڑے سے عربی لفظوں کی پہچان تو تھی نا تو کہتی تھی شروع کدھر ہے کھانے کا لفظ کدھر ہے ہم اردو میں ایسے ہی لکھتے نا اللہ کے نام سے کھاتا ہوں اللہ کے نام سے پیتا ہوں کیا پتہ چلا اس کے اندر فعل محذوف ہے کھانے سے پہلے پڑھو گے تو بسم اللہ ہی اکل تو پینے سے پہلے پڑھو گے تو بسم اللہ ہی شرب تو اور بسم اللہ ہی کے بعد جو کرتے جائیں گے یہ اتنا آٹومیٹک قسم کا جملہ ہے جس کو آپ کہیں گے ٹیلر میڈ ہر چیز پہ فٹ ہو جاتا ہے بلاغت اور اختصار کی حد ہے صرف ایک جملے میں نام اللہ کا بھی ہے اس کے الرحمن ہونے کی بھی بات ہے اور الرحیم ہونے کی بھی بات ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط اور اس میں یہ ایک جملہ کتنی بڑی بات ہے سچی بات ہے ایک جملے سے دین کا خلاصہ بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ حقیقت نبیوں کو سجتی ہے عام لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے کیونکہ جس کو اللہ بات مختصر طریقے سے اچھی طرح دوسرے کو پیش کرنا سکھا دے اللہ اس سے پھر کوئی کام لے لیتا ہے ہم اپنے اوپر لیں ہم خط لکھتے کیا حال ہیں کیسی ہیں موسم کیسا ہے سب ٹھیک ہے اچھا جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ کہوں بعض دفعہ اتنی چڑ آتی ہے یہ صرف میں اپنی بھی اور سب کی ساتھیوں کی اصلاح کے لیے بھی بات کروں گی جیسے اب آج کے خط کیا ہیں میسیجز ٹیکسٹنگ ای میلز دن میں آپ کو اگر 50-60 ای میلیں پڑھنی اور چیک کرنی پڑے اور ہر ای میل سے پہلے یہ ہو کیا حال ہیں کیسی ہیں آپ سے ایک بات کرنی تھی ضروری بات تھی اگر آپ کے مزاج پہ بوجھل نہ پڑے تو میں یہ بات کر دوں پھر آپ خاموش ہیں بڑی الجھن آتی ہے واللہ چوں چوں دل کرتا ہے کہ اتنی دیر میں تو آپ نے بات بھی پیش کر دینی تھی کئی دفعہ ایسے میسیجز آتے ہیں السلام علیکم اب میں کیا کہوں وعلیکم السلام اسلام کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے پھر اس کے بعد اگر آپ سنت سمجھتے ہوئے یا ذمہ داری سمجھتے وعلیکم السلام لکھ دیتے ہیں تو پھر آگے میسج آتا ہے کیا حال ہے بھئی آپ میرا حال کیوں پوچھ رہے ہیں میں تو بیمار نہیں ہوں اللہ کے حکم سے نہ میں ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہوں کہ آپ میرا حال پوچھنے آئی ہیں چار چھ جملوں کے بعد اچھا آپ سے کچھ بات کر لیں بھی کر رہے ہیں آپ بات پہلے سے اچھا آپ کا وقت تو نہیں لے رہی بھی لے رہے ہیں آپ پہلے سے سب سے خوبصورت مجھے وہ میسیجز لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ منہ سے پورا بولیں السلام علیکم و رحمت اللہ لیکن آپ لکھیں وہاں اس طرح سے کہ اگلے کو سمجھ آ جائے اسلام کی سیدھی بات کون ہوں کیا چاہتی ہوں جب وقت ہو اس کا ٹائم کا اس کا جواب دے دیں اور ایسوں کو میں دیکھتی ہوں کہ فوراً رپلائی کر دیتی ہوں میں اور جس میں بہت لمبی کہانی ہو بعض دفعہ پڑھ لیتی ہوں لیکن پڑھنے میں وقت لگ جاتا ہے یا پھر بعض دفعہ کہتی ہوں کہ اچھا جواب بعد میں دوں گی وہ پھر بھول جاتا ہے اوپر اور میسیجز آ جاتے ہیں کبھی اور ای میلیں آتی ہیں تو ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ یہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بہتر کلام کون سا ہے کل قلیل تھوڑا قاف سے قل ودلہ دو لفظ یاد رکھ لیں قل ودلہ قلیل اور دلیل والا دلہ دال سے دلیل یعنی جس کے اندر بہت کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیشہ اپنے کلام کو دیکھیں بعض لوگوں کی بات ایک سیکنڈ میں رپلائی کی جاتی ہے لکھتے بھی ویسی ہیں ماشاءاللہ جواب بھی اس کا دینا آسان ہے بعض کا سوال سمجھ کے اس کے جواب دینے کے بیچ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی بہت ادھر ادھر کی نہیں ماری اور ہم جب تک موسم کا حال نہ پوچھیں بات ہی نہیں بنتی بچے کیسے اچھا بچوں کا پوچھ دیں گے نا پھر بچوں کے باپ کا پوچھیں گی بچوں کے ابا کا پوچھیں اچھا ساس ٹھیک ہے تو ایک بامقصد انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ایک ہوتے عام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی کیلو کال نہیں کرنی چاہیے بے تکی باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ نہ کریں خط دینے کا طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے پھر دوسری بات ایک اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ خط کا جواب دینا بھی سنت ہے ہمارے اسلاف اس چیز کو عزت سمجھتے تھے یس کہیں کہ نو کہیں آپ کو وہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ایک لفظ کا یس کر دیں ایک لفظ کا نو کر دیں لیکن خط کا جواب دینا بھی سنت ہے کیونکہ ملکہ نے بھی دیا اور پھر ملکہ کی بات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس بات کو کیا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے اس میں بھی مختلف رسپانس سامنے آئے تھے دوسری بات اس میں اب ایک اور بڑی اہم ہے ایسی تحریر جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو کیا کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے تو آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے قرآن کی آیت ہی تو لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے عجمی بادشاہوں کو تو اس میں عموماً سورۃ آل عمران کی وہ آیت لکھتے تھے، تعالوا الی کلمۃ سوام بیننا و بینکم، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی بے عزتی کا ارادہ نہ ہو، کوئی ڈر ہو کہ یہ جلا دے گا خراب کر دے گا تو اور بات ہے. پھر اس کے بعد خط مختصر ہونا چاہیے. امام قتادہ کہتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہیں مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں. خط چھوٹا لگی یعنی کہ بات ہی نہ لکھے. اچھا بعض لوگ بالکل ہی اپوزٹ کرتے ہیں، پھر چھوٹا لکھا تو اصل بات ہی نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سیکھنے کی، اور ہم سب ساری زندگی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہوگا. تو بہرحال خط آ گیا اور ملکہ سبا کی طرف سے یہ جب پیغام ملتا ہے تو اس کے بعد ملکہ نے اس خط کو لے کر اپنے تک نہیں رکھا، پہلے تو خط پڑھ دیا کہ یہ بسم اللہ ہے. اب ذرا اگلا جملہ سوچئے جو بڑا کڑوا ہے. حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں، اللہ تعالو علیہ، یہ کہ میرے مقابلے میں تم سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور تم آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر. دو لائنوں کا خط، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالو علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِين. اب لکھئے یہاں ذرا ایک تقابل، کیسا خط ہے. آپ کو کوئی دو جملے یہ لکھ کے بھیج دے کہ بھائی یہ میری طرف سے، اللہ کس وقت کوئی نہیں جو رحمان اور رحیم ہے، اور فوراً میرے خلاف سرکشی چھوڑو اور مسلمان ہو کے آ جاؤ. جیسے آپ کسی نان مسلم کو لکھیں کہ سب باتیں چھوڑو جو کر رہے ہو، شراب جوا سب چھوڑ دو اور مسلمان ہو کے میرے گھر آ جاؤ. بہت ایک شاہی انداز ہے. اس کے برعکس ہم فرعون کا اور موسیٰ کا ذرا تقابل کرتے ہیں. دو چیزیں ہم دیکھیں گے ابھی. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ملکہ کو خط لکھنا اور اس کو دعوت دینا، اس میں کیا عمل ہے، اور اس کے اپوزٹ حضرت موسیٰ نے جب فرعون سے بات کی تو کیا تھی. پہلا فرق تو آپ کو یہ دیکھے گا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں آگے بھی پھر پڑھیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، قول قولا لینا، نرم بات کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے بات کی فرعون سے. جبکہ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، نرمی نہیں دکھ رہی. وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات سمجھ آتی ہیں، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی یہاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک ملکہ کو دعوت دے رہا ہے، جبکہ وہاں فرعون ایک بادشاہ تھا اور موسیٰ کہہ لیجئے کہ ایک ملزم تھے، قتل کے ملزم، اس کے گھر میں پلے ہوئے. فرق ہوتا ہے نا. آپ اپنے برابر کے لوگوں میں جا کے بات کریں گے نا تو آپ کی آواز میں ذرا سا اعتماد بھی زیادہ ہوگا، ٹون بھی سخت ہوگی کہ میں تم سے کوئی کم نہیں ہوں، تم ڈاکٹر ہو تو میں بھی ڈاکٹر ہوں، تم اگر بڑے پڑھے لکھے ہو تو میں بھی ہوں. اس کے برعکس آپ کسی اپنے سے ذرا اونچے لیول کے بندے سے بات کریں تو ویسے ہی آپ جناب اور یس پلیز لگتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا. دوسری بات، یہاں ایک اشارہ ملتا ہے، عورتوں کو جب تبلیغ کرے مرد تو کیسے بات ہو. ادھر مقابل میں ایک عورت ہے مرد کے، ادھر موسیٰ کے مرد کے مقابلے میں مرد تھا، تو نرمی کی بات نکال دی گئی. ٹھیک ہے، دوسری چیز آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر کہ تم آ جاؤ میری طرف اور تم مسلمان ہو جاؤ، ڈائریکٹ دعوت ہے. بالکل یہی انداز ہے اللہ کے نبی کا بھی. ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں الجھایا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، نیل پالش نہیں لگانی، سود چھوڑنا پڑے گا، نیور. واتونی مسلمین، یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کیجئے. ہمیشہ لوگوں کو پہلے بیسکس کی دعوت دیں پھر باقی چیزوں پہ آئے. بہرحال کچھ چیزیں آگے جا کے بھی سامنے آتی ہیں، آگے دیکھیے گا. قالت، اب خط کا رسپانس. جب یہ جملہ بولتی نا آیت 32 سے پہلے، یہ جملے آپ اپنے قرآن میں لکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اسے ایک لفظ سے پوری آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. قالت، ملکہ سبا کا کیا رسپانس تھا، کہنے لگی، یا ایہا الملو، اے میرے درباریو، اے سردارو، افتونی فی امری، فتویٰ دو مجھ کو اس معاملے میں. مطلب یہ کہ میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں، کیونکہ ما کنتو قاطیتن امرن، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی. کب تک؟ حتی تشہدون، جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہو. ये है मलका सबा की अकलमंदियों की लिस्ट में एक और इजाफा। पीछे जो कर चुके उसी में ऐड कर सकते हैं कि वो दूसरों के साथ मशवरा करती थी, अपनी टीम के लोगों को साथ लेकर चलती थी, अपने दरबारियों को उसने बात करने का हक दिया हुआ था। ये डेमोक्रेसी नहीं है, बाज ने इससे जमहूरियत को साबित कर दिया। डेमोक्रेसी नहीं है, ये शूरा है, जो हम पढ़ेंगे सूरह शूरा में, अमरुहुम शूरा बैनहुम। थी शिर्क में फंसी हुई औरत, लेकिन इखलाकी तौर पे एथिक्स के एतबार से बड़ी आला खातून थी, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स फिरौन के रिस्पॉन्स से फर्क था। ठीक है, क्योंकि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी खुद जाके फिरौन को, मर्द भी थे, फिरौन को हिदायत नहीं मिली क्योंकि लेना नहीं चाहता था, सरकश था, जाबिर था, वो सुनने नहीं आया था, सुनाने आया था, वो सुन के मानने की नीयत से नहीं आया था। इधर देखिए इस औरत का हाल ये है कि मूसा तो छोड़ दीजिए, परिंदे के हाथ मैसेज आ रहा है और मैसेज भी बड़ा शाही किस्म का, गुस्से में नहीं आ गई, फाड़ नहीं दिया इसने मुझे क्या समझा, बल्कि मशवरा दिया कि, और साथ ही कह दिया कि मैं आपके साथ मशवरा करती हूँ। नबी सल्लम की भी यही सुन्नत थी कि आप अपने साथियों को शामिल करते थे। देखिए अब आप कहेंगे हमारी तो कोई टीम ही नहीं है, हम कोई काम तो कर नहीं रहे, तो आपके बच्चे भी तो आपकी टीम है। जब आप अपने बच्चों को कोई काम कहना चाहती हैं, घर का एक कोई काम है, कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ पकना है, पकाना है, मेहमान आ रहे हैं, घर साफ करना है, कुछ भी है, तो बच्चे और आप एक टीम ही तो बन गए, बजाय इसके कि ये करो वो करो। बेटा क्या करें, बेटा आज क्या पकाएं, चलो पहले क्या करें, पहले सफाई कर लें कि खाना पका लें, अच्छा बाहर चलें, क्या ख्याल है आज बाहर खाना खाएं कि घर में खाएं। सिर्फ जुमले बदलने की जरूरत होती है, बिलीव मी, हुक्म जो है ना वो रिक्वेस्ट में बदल जाता है, बल्कि हुक्म देने के बाद दूसरे लोग रिएक्शन शो करते हैं, और आप उसको जब रिक्वेस्ट में बदल देते हैं ना तो लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं, मैं कर लूंगा ये कोई बात नहीं, आप ये कर ले मैं वो कर लूंगा, बजाय इसके बहुत सारे काम है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, नहीं ये काम है सारे तो देखते क्या, नहीं मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, नहीं 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 मैं कर लूंगा, मियां साहब भी कहेंगे मैं वैक्यूम कर देता हूँ, बच्चे भी कहेंगे अच्छा मैं ये कर देता हूँ, तो एक खूबसूरत टीम मैनेजमेंट है। देखिए खुद काम करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि आप कर चुके, आदत है आपको कई साल से करने की, लेकिन दूसरों को शामिल करें, गलत करेंगे ना, आपके सामने कर लें, खुशकिस्मत है किसी की बात बाप की कि मेरे सामने जो गलतियां करनी है कर लो, क्योंकि पीछे बाप मौजूद है जो तुम्हारी गलतियों की सलाह कर देगा। मेरे बाद भटकोगे, मेरे बाद गिरोगे तो क्या होगा, कहते ना कि मुझे सहारा समझने वालों अगर मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। कभी कोई दरख्त किसी दूसरे की जड़ों पर नहीं खड़ा होता, तो लिहाजा इस मलका ने अक्लमंदी का सबूत दिया कि वो मशवरे करती थी। मशवरा करने से जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्स में भी बदलता है, और लोग आपकी ताकत बन जाते हैं, और आपको जो काम अकेले करके लोगों को साबित करना था क्यों किया, वो लोग आपकी जुबान बन जाते हैं। तो टीम प्रोड्यूस करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी की दलील है। पीछे भी बहुत दफा बात हुई, बस इशारा इधर काफी है कि जो लोग खुद काम करते हैं, एक्सीलेंट काम करते हैं, कब तक, जब तक वो हैं, जब तक वो कर सकते हैं, जब तक वो सेहतमंद है, इधर जरा इनमें से किसी चीज ने बेवफाई की, काम खत्म, ठप, नहीं जी वो है ही नहीं, है ही नहीं वो बंदा, तो काम कैसे होगा। असल काम वो है जो आपके बाद हो, आपके बाद हो, वल्लाही। और अपने बच्चों को आजमाया करें, अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने हेल्पर्स को जिनको आपने ट्रेनिंग दी, उनको चुपके से बैठ के देखें ये क्या कर रहे हैं, करने दें गलतियां। कई मीटिंग में सिर्फ खामोश साइलेंट बैठना पड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कर क्या रहे, करो गलतियां, कोई इतनी बड़ी ना कर दें कि आपको बीच में बोलना पड़े, सुने, चुप करें, दिल बड़ा करें, फिर बाद में समझाएं कि जो आप कह रही थी ऐसा करना चाहिए, और देखें एक दफा जो गलती करके पलटेगा आपके सामने वो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। तो लिहाजा थोड़ा सा रिस्क ले, बस माएं खपती भी रहती हैं, काम को नहीं करते बच्चे, काम मैं करती हूँ, इनको है नहीं, फैला जाते हैं, और खास तौर पे बेटियों की जो सख्ती आती है, जरा कोई बहू बेटी काम करने लगे कहती है तुम गंद बड़ा डालती हो, तुम खाना पकाती हो, इसके बाद जो किचन साफ करना है तो मैं खुद पका लूंगी, ये गलत तरीका होता है। करो भाई, गंद डालो, अच्छा करो, करो, मैं बैठी हूँ, मैंने आज तुम्हारे ही हाथ से खाना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे फिर कॉन्फिडेंस भी डिवेलप होता है। फिर उसके बाद देखिए कि मलका ने जब अपने दरबारियों से ये बात कह दी कि भाई मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तो अब दरबारियों का जवाब, यानी आयत 33 को लिख लीजिए दरबारियों का रिस्पॉन्स। कालू नहनु उलू कुव्वतन, कहने लगे हम भी बड़ी कुव्वत वाले हैं। मर्द है ना, मर्दों का अंदाज ही दिखता है बात से। बल्कि वह उलू बासिन शदीदिन, जबरदस्त जंगी सलाहियतें भी रखते हैं। हाँ लेकिन वल अमरु इलैकी, फैसले का इख्तियार तो फिर आप ही के हाथ में। फंजुरी माजा तामुरीन, आप खुद देख लीजिए कि आप क्या फैसला करती हैं, क्या हुक्म देती हैं। यहां से आपको दरबारियों की भी अकलमंदी दिख रही है। पहली बात है दबे हुए नहीं थे, और अंदाज लग रहा है कि इंक्लाइनेशन था कि हम जरा इनको दो दो हाथ दिखाते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर इतनी जल्दी कैसे कर दिया ये दावा कि मुसलमान हो जाओ, हमारे पास आ जाओ, सरेंडर करो, तो बिस्मिल्लाह करो, हम लड़ते हैं, कुव्वत भी बड़ी है, लड़ाई भी आती है। लेकिन फिर बात मलका ही की तरफ डाल दी, वैसे हमने ही आपको बता दिया काम, अब जो आप कहेंगी वही बेहतर होगा। ठीक है, तो गोया कि इसमें मर्दानगी का एक रंग दिख रहा है। खैर, मलका का जवाब कालत, कहने लगी, ये जुमला जो है ना इसको लिख लीजिए, कालत वो बोली, इन्नल बेशक मुलूका, मुलूक मलक की जमा, बादशाह, बेशक बादशाह, इजा जब दखलू दाखिल होते हैं, करियतन किसी बस्ती में, अफसदूहा, वो तो इसमें फसाद बर्पा कर देते हैं। ये है खूबसूरत जुमला एक मलका का। नाजुक मौका था, लड़ाई हो सकती थी, खाना जंगी का खतरा था। बिल्कुल मुझे हिरकल याद आ रहा है, कितने तपाक से उसने कह दिया था हाँ सब सच है, लेकिन जरा दरबार में उठती हुई आवाजें सुनी तो फौरन डिफेंसिव हो गया, नहीं नहीं मैं तो जरा चेक कर रहा था कि तुमने क्या सोचा। तो इस मलका ने इस मौके पे क्राउड को कैसे मेंटेन किया, हाँ हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उस बादशाह से हम मुकाबला करें, लेकिन तुम्हें नहीं पता जब कोई बादशाह हमला करने की नजर से किसी बस्ती में आता है तो क्या वो उसकी कुर्सी से कुर्सी नहीं बजा देता, मतलब ये कि लड़ाई नहीं करेंगे हम, शहर या इलाके को जंग के जरिए से फतह नहीं करेंगे। और बादशाह क्या करते हैं, वजालू इज्जत अहलिहा जिल्ला, और इसके मुअज्जज लोगों को जलील कर देते हैं, वकज़ालिका यफ़अलून, और इसी तरह वो भी करेंगे। ये है वो जुमला जिसके साथ मुसलमान बरसगीर पाको हिंद की तारीख जुड़ी हुई है, और इसी को अलामा इकबाल ने अपनी एक नज़म खिजर राह में एक उनवान के अंदर भी पेश किया है, क्या बताऊं तुझको रमज आया इन्नल मुलूक। कहते आ मैं तुझे बताऊं कि ये जो आयत है ना इन्नल मुलूक, इसी आयत की तरफ इशारा है। इसका मतलब क्या, इशारा क्या है, क्या सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, यानी जो कौम गालिब है ना बस वो एक किस्म का जादू कर देती है, ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम अगर, यानी सोए हुए मुसलमान जो किसी की गुलामी में अगर जरा से वो उठने लगते हैं ना फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहरी। यानी खुलासा क्या है कि इस आयत का मतलब ये है कि जब बादशाह जो बड़े लीडर्स सुपर पावर्स किसी हुकूमत पे खास तौर पे दबे हुए मुसलमानों पे गालिब आते हैं तो उन पे जादू का एक असर कर देते हैं, और जरा मुसलमान आंख उठा के देखना भी चाहता है मजलूम जो है जो भी है तो फिर उनको दोबारा वो सलाह देती है कि अभी सोए रहो। वल्लाही यही हालात मुसलमानों के साथ हुए। आपको पता है कि बरसगीर पाको हिंद में पहले मुसलमान हुक्मरान थे, नबी सल्लम के दौर से लेकर 1000 साल तक मुसलमानों ने जो हुकूमत की इसमें बरसगीर पाको हिंद की हुकूमत मारूफ है, मुगलिया दौर आपने सुना होगा, हिंदू महकूम थे और मुसलमान हाकिम थे। अंग्रेज तिजारत के रास्ते इंडिया में दाखिल हुए, बज़ाहर उन्होंने वहां कॉलोनीज बनाए, ये कॉलोनिकल सिस्टम कह ले, कैसे हमें कॉलोनीज बना दिया। जब अंग्रेज वहां अपने मुफाद के लिए आए, गरम मसाले लेने के लिए आए, वहां की चीजों को लिया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी खूबियों की वजह से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग की वजह से उधर इक्तदार हासिल कर लिया। जो ही वो लीडर बने वहां के, हिंदुओं को तो कोई फर्क ना पड़ा क्योंकि वो कल तक मुसलमानों के गुलाम थे, अब अंग्रेजों के गुलाम हो गए। लेकिन मुसलमानों के साथ तो गोया कि ये हाल था कि आसमान से पटख कर जमीन पे मारा गया, हाकिम से महकूम बन गए, अर्श से कह लीजिए फर्श पे गिर गए। अब अगर अंग्रेजों को खतरा था तो मुसलमानों से था, उनको ये खदशा था कि अगर मुसलमान अपना खोया हुआ इक्तदार दोबारा हासिल करने के लिए کوشش کر دیں گے تو ہمارے پاؤں نہیں جمیں گے۔ چنانچہ پھر انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کی اس بغاوت کو روکنے کی کوششیں کی، دبایا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ معاشرے کے جو گھٹیا لوگوں کو خطاب دیے جاتے تھے نا، یعنی جو کل تک گھٹیا لوگ تھے، نیچے تھے، دبے، ان کو جاگیریں دیں، ان کو بڑے بڑے منصب دیے، گورنمنٹ میں بٹھایا، اور جو معزز اور شرفا تھے نا ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ ایسے تمام لوگ آپ دیکھیں انگریز کو خوش کرنے کے لیے اپنی قوم کے مفادات کو بیچتے رہے اور اپنے بڑوں سے شاباشیاں لیتے رہے۔ یہی طریقہ فرعون کا تھا مصر میں، اس نے بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی ہوئی تھی، کچھ سہولتیں مراعات تھیں، فرعون کو خوش کرتے جاتے اور یہ سارے بینیفٹس لیتے رہتے، اپنی ملیں لگاتے، اپنی فیکٹریاں بناتے، اپنے گھر بناتے، جب موقع ملتا فرعون کے حق میں نعرے لگا دیتے اور بنی اسرائیل کے خلاف مدد کر دیتے۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ سورہ یونس آیت 83 میں، فما آمن لموسیٰ الا ذرية من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنوا، کہ بس کوئی نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کہ جو فرعون اور اس کے سرداروں کی خوف کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتا کہ جب یہ رولرشپ چینج ہوئی تھی برے صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں، اس کے بعد کس طرح سے مسلمانوں کو ڈی گریڈ کیا گیا تھا، یہی جو جملہ ہے، ادھر آپ دیکھیے اس ملکہ کے جملے کو بڑا بڑا لکھ لے، وجعلوا عزت اہلھا ذلہ، یعنی جو یہاں کے عزیز معزز لوگ ہیں ان کو بادشاہ ذلیل کر دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا نا کہ جب بھی کہیں انقلاب آتا ہے، کہیں بھی کوئی ریولیوشن آتا ہے، تو جو موسٹلی جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے، مراد یہ کہ جو عزت والے تھے ان کو پکڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ کام کیسے کیا انہوں نے، اللہ اکبر، میڈیا کے ذریعے لوگوں کا تھاٹ پیٹرن چینج کرنا، یہ بہت لوگوں کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں نے، یعنی جن کی ہم یہاں بات کریں، ان مسلمانوں کے کانسیپٹس چینج کیے، فلموں سے مدد لی، یہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں نا ہمارے آپ کے بچے، یہ اس دور کی کہانی ہے، ہیروئنوں کو پیش کیا گیا، کلچر بدلا گیا، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ڈیگریڈ کیا گیا۔ کسی کو کامیاب دکھانا ہے تو اس کو کوٹس میں سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگائی ہوئی، بٹن رکھے ہوئے، اور کسی کو کام میں بیکار دیکھنا ہے تو ململ کے کپڑے میں دیکھنا۔ لوگوں کو اس وقت انہوں نے کپڑے دیے، پہنو مرے کپڑے، اب کل تک جو دھوتیاں پہنتے تھے بنگلہ دیش کی بنی ہوئی نرم نرم ململ کی، ان کو سوٹڈ بوٹڈ کر دیا، غصہ آیا، ماشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈھاکہ کی ململ کتنی معروف ہے، اور آپ کو شاید پتا ہے کہ سنا ہوا ہے کہ ایک اس کا تھان ماچس کی ڈبیا میں آ جاتا ہے، اور یہ کیسے بنتے ہیں، انگوٹھوں سے، وہ ایسے انگوٹھوں سے دبا دبا کے اس کے تانے پیٹے کو جوڑتے ہیں۔ انہوں نے اس دور میں لوگوں کے انگوٹھے کٹوا دیے کہ یہ نہ ململ بنے، نہ مسلمانوں کی یہ چیز باہر ایکسپورٹ ہو، اور نہ مسلمان آگے بڑھے۔ اپنی آرٹیفیشل چیزیں پیش کی مسلمانوں سے ان کا رنگ کاٹنے کے لیے، پہلے ان کو ان کی تہذیب پر شرمندہ کیا، پھر اس پر انگریزی کا رنگ چڑھایا، احساس کمتری میں مبتلا کیا۔ اور یاد رکھیے، کسی کا رنگ چڑھانا ہو پہلے اپنا اتارنا پڑتا ہے۔ شلوار قمیض کو اس دور میں نائٹ سوٹ کا نام دیا گیا، اور یہ جو لفظ آپ اور میں بولتے ہیں نا، خان سامہ، یہ کیا ہے، خان پلس سامان، یعنی خان صاحب جو گھر کے سامان کے مالک ہیں۔ مسلمانوں کو اس دور میں یہ لقب دیے گئے، داڑھی رکھتے ہوئے مسلمان شرماتے تھے، انگریز کل بھی کلین شیو تھے آج بھی کلین شیو ہوں گے، اس دور میں مسلمانوں کی داڑھیاں کٹی۔ ہمارے اسلاف کی عادت تھی، کہتے ہیں کہ دو چیزیں، داڑھی اور والدین کا خیال رکھتے تھے، یہ ریچولز میں سے تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ اس دور میں پھر جنریشن گیپ آیا، پچھلی نسل اپنے اقدار پہ ڈٹی رہی کہ ہم تو یہ نہیں کپڑے بدلیں گے، ہم تو اپنا حالولیہ نہیں بدلیں گے، بچے بگڑ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنریشن گیپ آ گیا، جوانوں کی سوچیں بدل گئیں، اور ماں باپ کو ایکسٹرا بیگیج کے طور پہ گھروں میں رکھا جانے لگا۔ یہاں تک دیکھا گیا اس دور میں کہ ماں باپ کو سرونٹس کے طور پہ پیش کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے پرانے خادم ہیں۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ عربی کا زوال شروع ہوا، دینی مدرسے بند ہو گئے، اس سے پہلے 5,000 سے زائد مدرسے صرف دہلی میں تھے۔ آپ سوچئے، جب 5,000 مدرسے بند ہوئے तो वहां पढ़ाने वाले को 20,000, तो चार चार भी टीचर लगा ले तो 20,000 उस्ताद थे, वो किधर गए? उनको ले ऑफ किया गया, यानी आइज्जत जो थे वो जिल्ला बन गए, और अंग्रेजी बोलने वालों को जॉब्स मिल गई। उस वक्त में फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नर्स, ये सारे टाइटल सामने आए, स्टेटस सिंबल्स। अंग्रेज की जॉब उस वक्त एक प्रोटोकॉल बन गया। जैसे आज भी हम कहते नहीं, हमें पाकिस्तानी मासियां नहीं चाहिए, हम फिलिपिनीज मेड्स रखते हैं, और हमें फुला। याद रखिए, जो कौम अपनी नस्ल को किसी और के हवाले कर देगी, चंद सालों में वो कौम भी उसी की हो जाएगी। माँ अपनी गोद से निकालकर बच्चे को दूसरी की गोद में जब दे देती है ना, तो असल में वो अपनी जड़ें काट लेती है। ये वो दौर था जब सर का खिताब मिला, सर, SIR, सर। फातह तहजीब की ताजीम और अपने दीन पे शर्मिंदगी। और जो अंग्रेज को सल्यूट मारता था, उनके बच्चों को दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भेजा गया। फिर उस दौर में जब मर्दों को सूटेड बूटेड किया गया, तो बीवियों के हिजाब उतरे, पार्टियों में बेपर्दा पेश की गई बीवियां। वो याद कीजिए अकबर अलाबादी के शार के, वो नजर आई चंद बीवियां तो कहा इनका पर्दा किधर हुआ, कहा मर्दों की अकल पे पड़ गया। ये सारे उस दौर के शार हैं। नाचो, दाढ़ियां रखने पर प्रमोशन रुकी। आप याद रखिए, ये वो दौर था कि इस्लाम के सच्चे नगीने निकालकर उसकी जगह झूठे नगीने लगा दिए गए। मुसलमानों की हिस्ट्री में पहचान खत्म, और हमारा जितना उस दौर का पढ़ा लिखा जहीन तबका था ना, वो इनसे मरूब हो गया। और सैकड़ों लोग उस वक्त फिर सब कॉन्टिनेंट छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटीज में चले गए। और जब किसी भी माशरे का पढ़ा लिखा तबका दूर होता है ना, तो बंजर कौम पीछे रह जाती है। कॉलेज वहां थे, तरक्की ना हुई, और 1947 आ गया, जहां उस वक्त का मुसलमान था आज जहनी तौर पर वहां से भी नीचे आ गया। उस दौर में शराब को आम किया गया, फिर तलाकें हुई घर घर में। जब मर्द को इतने सलाम होंगे तो बीवियों को तो वो नहीं मानेंगी ना, तो घर टूटे, जिससे मुसलमान इखलाकी तौर पे पीछे हुए, हमारी वैल्यूज बदल गई। जहनी गुलामी तो आज भी आम है। वही बात है कि वी लिक द बूट्स हु किक्स अस, ये हालात है। पहली बीवी छोड़ी जो मशरकी नौयत की थी, तो बाहर से कोई दूसरी बीवी इंपोर्ट कर ली। तो इस तरह से अजिल्ला और आइज्जा की खेल देख लीजिए। आज क्या आपको ये आज की कहानी नहीं लगती? अल्लाह ताला ने यही कहानी उस मलका की जुबान से बोल दी कि देखो रिएक्शन से बचो। अकलमंद थी, कहने लगी खामखा वो भी आएंगे, कुछ हमारा खून बहेगा कुछ उनका बहेगा, इसकी बात ना करो, कत्ल होगा, गारतगरी होगी, कैदी बन जाएंगे, और ये दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा हम नहीं करते। गोया के मलका ने कहा, नहीं, हम एक अच्छी भली सीधी सादी दावत को क्यों जंग में बदलें? आज के दौर में भी देखिए, कुछ लोगों को जब आप दीन की दावत दें, यानी मिसाल है, आप कहते हैं ना फुलां जाके दावा का काम करते हैं, तो कुछ लोग ही खुश होते हैं जुमले पे, कहते हैं हाय है दावा का काम करते हैं, बस एक्सट्रीमिस्ट एथियत, देख लो को फिक्र ना हो, हाय है किसी का वीजा ना कैंसिल हो जाए। भाई दावा का काम करते हैं वो, कोई आपके ऊपर किसी को मुसल्लत तो नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत जो कौम नहीं देगी वो बर्बाद हो जाएगी। और याद रखिए, किसी सोसाइटी में अगर कुछ भी ना लोग ये काम करेंगे, तो हम सब तबाह बर्बाद होंगे। लेकिन आज हम मुसलमान ज़हनी तौर पर इतने पीछे हो गए कि किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना एक्सट्रीम कहते हैं। कहां फिर उसको शराब से रोकेंगे, और कहां हम उसको दूसरी चीजों से मना करेंगे? तो लिहाजा जरूरत इस बात की, आज हम मुसलमान इस किताब को पढ़ने के बाद दोबारा अपने ऊपर आए। नॉर्वे में हमने अपनी एक क्लास में वीडियो दिखाई थी, तवील थी, 1 घंटे की थी, उर्दू में, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डबिंग। यकीन करें, जिसको आप कहते हैं ना कि खून खौलता है, हकायक की बुनियाद पे उसमें फिगर्स थे कि किस तरह मुसलमान अपने दीन से कटे, उनकी तरजीहात बदली, और वो कहना चाहिए कि अपने ही घर में हम मुजरिम बन गए। ये लम्हा लम्हा का सवाल है। आपका चलता हुआ कारोबार कभी एकदम तो नहीं बैंकरप्सी पे आता? बीच में कई कबाख्ते होती हैं, ढीलपान होता है। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं, कभी सोचा आपने? सर उठा के जीना ही नहीं आता हमें। अभी मैं पाकिस्तान में थी, मुझे किसी से एक किताब मिली, बड़ी खूबसूरत थी, कि सर उठा के जीना सीखो। हमें तो नहीं आता, हम तो ऐसे मजबूर। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इट्स ओके, नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, नो नो, आई डू व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये हमारा हाल है। आप कहते कि जब इस्लाम अपने गलबे पे आता है, कहा सड़क के बीच में चलो, गैर मुस्लिमों पे रास्ते तंग हो। हम कहां रास्ते तंग करेंगे, हमारे तो दिमागों की जमीनों पे वो राज करते हैं। हमारी सोच, हमारी अकलें, हमारे यंग, हमारी यूथ मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलते हैं, उनकी बोली बोलने से मुराद लैंग्वेज नहीं है, उनकी तहजीब की बोली और उनकी कहानियां। दुआ कीजिए या जरूरी बतलई है मुजिल वल मस्कना की कैफियत हमारे जरिए कुछ कम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मुसलमान जाग रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे रिवॉर्ड्स, और आज हम खुद भी ठोकरें खा खा के कम अज कम अब आंख तो उठाने वाले हो गए। पिछले दिनों एक ऐसी बात सामने आई यूथ की तरफ से, जो उन्होंने कोई रिएक्शन शो किया तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कम अज कम अब हमारे बच्चों को ये बताए कि तुम हमें गाली क्यों देते हो, हमने क्या किया। हमारे बड़े कहते अच्छा चुप 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 बोलते नहीं, ठीक है लड़ाई ना हो। अब हमारे बच्चे गलत चीज सुन के पूछते हैं क्यों भाई बताओ, साबित करो मुस्लिम्स क्यों है, दूसरे क्यों नहीं है इस पे। तो ये जिंदा कौमों की अलामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अब हमारी जिंदगी में वो हालात बनाने शुरू कर दिए हैं, क्या इज्जा जिल्ला और अजिल्ला इज्जत दोबारा होगा। क्यामत के भी तो मंजरों में एक मंजर है ना, खाफ इज्जत और राफिया, ऊंचों को नीचा और नीचों को ऊंचा कर देगी। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को कहा करते थे क्यामत के दिन कितनी कपड़ों वाली बेल कपड़े हो जाएंगी, कितनी बेलिबास वहां लिबास वाली होंगी। तो याद रखे तिल कलैया मनोदा विलुहा बैनन्नास, ये वो दिन है जो हम लोगों में पेश करते हैं, कभी की रातें लंबी कभी दिन के लंबे। क्या हुआ अगर आज हम मुसलमानों की रात लंबी है, इंशाल्लाह सुबह होगी, रोशनी आएगी, तब्दीली आएगी, आने वाली है। सिर्फ मैं और आप इस किताब को आम कर दें, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। हमारी प्रायोरिटीज हम न रहे, अल्लाह का दीन रहे। अल्लाह के दीन को फायदा है बिस्मिल्लाह करें, मुझे फायदा है? नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। हम तो इतने पिकी हैं, मुझे किस में मजा आता है, मुझे किस इबादत में मजा आता है, मुझे दीन सीखने का तरीका कौन सा पसंद है। कहां हम सोचते हैं कि मैं थोड़ी भूखी भी रह लूं, दूसरे को फायदा हो जाए, मैं इसमें भी खुश हूं, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे फैलेगा। वही वाक्या याद कर लें, एक दूध का प्याला, पानी का प्याला, जंग में 7-8 लोगों से घूमकर फिर पहले पे आ गए, नहीं उसको दे दो, वो मेरा भाई है, उसको दे दो, उसको दे दो, क्योंकि वो हकीकत में इसको डिजर्व करता है। मेरा तो फिर भी कुछ पेड़ भरा हुआ है, वो तो 4 दिन से प्यासा है। लेकिन आज हम वाकई दुनिया में जैसे हरीस है ना, इस तरह दीन के मामले में भी हरीस है। मेरी मर्जी का दीन दोगे तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं ले सकता। तो याद रखिए अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है। अल्लाह ने किस से काम लिया, एक परिंदे से, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको क्यों ना मौका दे। खुशकिस्मत है आज के दौर में वो लोग जो अल्लाह के दीन का झंडा उठाए। मैं अल्लाह इस गुलामी को कबूल करके इसी पे मौत दे देना तो हम बच जाएंगे, कि अल्लाह हमने तेरी गुलामी कबूल कर ली थी, तेरी नौकरी ले ली थी। बहरहाल बात बहुत रकीक है और लगता है कि हम अभी भी इसका हक नहीं अदा कर सके।